और अल्लाह ताला ने फरमाया, ये देखें अब आई है वो बात जो उन्होंने सवाल पूछा था। उसका एक पहले ट्रेलर, एक थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन तमहीद, फिर उसके बाद इसकी डिटेल। और इस कहानी से भी आप बहुत सीखेंगे कि जब ईमान का लुटेरा दज्जाल आएगा तो हम अपने ईमान को कैसे बचाएंगे। इसीलिए तो पहली 10 आयतें पढ़नी है ना, अभी 10 नहीं हुई है, ठीक है। और दज्जाल इस वक्त भी मौजूद है, कहीं पैदा नहीं होना उसने, कहीं है, उसने सिर्फ जाहिर होना है। जब अल्लाह ताला चाहेगा उस वक्त वो जाहिर होगा। तो उससे पहले ईमान तो इतना मजबूत होना चाहिए, या उसको देख के ईमान मजबूत करना है। और ईमान मजबूत करने के लिए अभी तक हमें क्या पता चल रहा है? कुरान, कुरान, अकीदा की दुरुस्तगी, अकीदा सही कर लेना, अकीदा प्योर कर लेना, दुनिया का गम ना लगा के बैठे रहना, इसमें ही ना घुल जाना। ये अभी तक समझ चुके हैं ना हम ब्रीफली। अब देखते हैं क्या मैसेज हमें मिलता है। अम हसिबता, क्या तुमने समझ रखा है? अन्ना अस्हाब अल कहफी व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, के अस्हाबे कहफ और रकीम वाले जो अस्हाबे रकीम थे वो कोई बहुत अजीब निशानी है अल्लाह की। कोई बहुत अजीब निशानी यानी क्या मतलब? कि मुशरिकीन ने मक्का आके सवाल कर रहे हैं ना, तो उनको कहा गया कि तुम्हें ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि कुछ लोग थे स्लीपर्स ऑफ द केव जो सो गए थे, बड़ा अरसा सोए रहे थे, रकीम वाले, वो बड़ी एक अजीब बात है, तुम्हें ये अजीब लग रही है? अगर तुम ये समझते हो कि बड़ी अजीब बात है, तो अल्लाह ताला की तो और बहुत सारी अजीब बातें तुम्हारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, उनको पर तो कभी गौर करो। वो क्या है? आसमान, जमीन, दिन और रात, चरिंद और परिंद और ये सारी कायनात, सूरज और चांद। मगर क्या बात है कि तुम्हें ये एक अजीब निशानी लगती है, इसका पूछने के लिए तुम दौड़े आ रहे हो कि आप बताएं इसके बारे में, तब आपकी रिसालत को मानते हैं। और ये नहीं नजर आता कि कितनी निशानियां अल्लाह ताला ने बिखेरी हुई है। दूसरा मतलब कि क्या यही एक अजीब निशानी है तुम्हें? ये बहुत बड़ी अजीब निशानी तुम्हें लग रही है, जबकि अल्लाह के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। ये जो इनको सुला देना, इनको सुला के उठा देना, अल्लाह के लिए कुछ नहीं है। ये तुम समझते हो बहुत बड़ी बात हो गई, अल्लाह जब चाहे ये कर ले। और आप देखें कि ये बात हम लोगों के अंदर आज इतनी कॉमन हो गई है ना, कि दीन सिर्फ हमारे लिए बस ऐसे ही कि कोई हैरान कुन चीज हो, कोई ऐसी बात ही हो, जैसे वो आप देख रहे हैं कि ओ इतने साल सो गए वो और फिर उठे, बहुत ही बड़ी बात, बड़ी अजीब बात हो गई। ये हम भी दीन को ना आज इस तरह से ही लेते हैं कि कुछ कुछ ऐसी कोई बात होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती चीज ऐसे आ जाए, कोई दिखाएं, कोई हैरत अंगेज चीज, कोई भाई मतलब है आसमान को देख के तो नहीं कभी कहेंगे, लेकिन आसमान फट जाए तो फिर ओ बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा, चांद को देख के कभी हैरान नहीं होंगे कि अल्लाह की कितनी बड़ी निशानी है, चांद दो टुकड़े हो गया तो बस बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा जी, बस दीन को चाहते हैं कि कोई इस तरह का ना कोई चमत्कार सा हम कुछ दिखाते रहो, तो फिर हम बड़े फैसिनेट होते हैं। इसीलिए आप देखते नहीं है रोजाना कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं कि बादलों पे अल्लाह लिखा हुआ आ गया जी, आलू काटा उस पे मोहम्मद लिखा हुआ था जी, देखो काबे के अंदर से जी तिलावत की आवाजें आ रही, ओ जी वो इंसान जो है चांद की तरफ गए तो उन्होंने रास्ते में अजानों की आवाजें सुन ली, ओ जी देखो वो फलां बंदा वो अंधा था वो वहां पे उसने जाके काबा पे दुआ मांगी, उसकी बिनाई उसी वक्त वापिस आ गई। क्या हमने दीन को समझा हुआ? मतलब ऐसी कोई हमें बातें चाहिए कि जो हैरान और शिद्दत हमें कर दें, कोई ऐसा ही कोई चीज चाहिए, कोई ऐसी बातें चाहिए तो फिर हम बड़े फैसिनेट होते हैं। फिर वो देखो तो तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी ऐसी चीजें हैं, इंसान अपने जिस्म में ही देख ले कितना कुछ है ऐसा जिसके ऊपर आप हैरान रह जाए, उसके ऊपर कोई गौर ही नहीं, वो कोई ताज्जुब की बात ही नहीं लगती आपको, कोई बड़ी बात नहीं लगती। ऐसे अजूबे देखने के लिए बस रहते हैं, वो खुद ही बना बना के। और इतना कुछ अल्लाह माफ करे कि इसके ऊपर रखा होता है यूट्यूब पे, और ऐसे ऐसी ऐसी बातें, क्या जरूरत है इन बातों की, झूठी बातें भी। जी वो तो फलाने ने कुरान पढ़ा, वो जो फलाने एक्टर उनकी आंखों में आंसू आ गए, उधर से इधर चीजें मिलाई, इधर से इधर मिलाई, इधर से सीन काट के उधर रख दिया, इधर से करके कर दिया। क्यों क्यों ऐसी चीजों की तलाश में हम? ये बड़ा खतरनाक रवैया है कि ऑलवेज ऐसी चीजें चाहना बस। तो अल्लाह ताला की निशानियां हर तरफ हैं, क्या ये अजूबे नजर नहीं आते कि ऐसी निशानियों की जरूरत हो हमें हमारा ईमान बढ़ाने के लिए, ईमान ताजा करने के लिए, या किसी को ईमान लाने के लिए? नहीं जरूरत है। देखो इन समंदरों को, देखो इन मछलियों को, देखो इन परिंदों को, देखो इन जानवरों को, देखो आसमान को, देखो बारिश को, देखो इंसान के अपने जिस्म को, कितना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इसकी तरफ तवज्जो करो, तो मत इस तरह की चीजों से वो बहुत कुछ समझें, या ऐसी कुछ बातें निकाल के लाएं, या ऐसी कुछ चीजों के बहुत ज्यादा इश्तिहार देने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ जाती। और जो गलत बातें निकाल निकाल के लाते हैं, मत निकालें, क्यों झूठ करते? अल्लाह को नहीं जरूरत है ऐसी किसी चीज के लिए कि वो ऐसे दिखाए तो लोग ईमान लेकर आ जाए। उसने दिखाना हो तो वो फरिश्ते उतार दे आसमान से, तुम सारे लोग ईमान ले आओ। तो अल्लाह ताला ने तो अपने नबी को भी फरमा दिया कि अल्लाह ने नहीं दिखानी कोई निशानी इनको। पहले हमने पढ़ा है सूरह इसरा में, जिसने ईमान लाना है ऐसे ही लाए। ये कुरान काफी नहीं है निशानी, ये मौजा नहीं नजर आता। तो वो तुम इनको बड़ी निशानी समझते हो कि ये बड़ी अजीब ताज्जुब वाली बात अल्लाह ताला ने कर दी। अल्लाह की और बहुत निशानी है, और यही कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के लिए। तो दोनों इसमें माने आ गए। असहाब कहफ जो है, कहफ के साथी, आप ये तो आपको पता है, यानी साथी किसी को कब कहा जाता है, जब कोई ज्यादा अरसा किसी के साथ रहे, या दिन रात किसी के साथ गुजारता है, उसका दोस्त है, उसका करीबी है, तो उसको आप कहते हैं ये इसका साथी है। मियां बीवी को भी एक दूसरे का कंपेनियन कहा जाता है, साथी है। तो क्योंकि वो साथ रहते हैं ना, एक साथ वक्त गुजारना, तो गार भी इनका साथी बन गया, क्योंकि वो गार में इतना अरसा रहे, उनको गार वाले कह दिया गया, साहब कहा। और रकीम क्या है, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है कि रकीम ये चीज ये चीज, लेकिन दो चीजों को आपके सामने सिर्फ रखूंगी। इसराइली रिवायात बहुत सारी हैं इसलिए उनको छोड़ दे। रकीम रकम से, रकम जैसे कहते हैं ना, रकम की गई चीज, ये मरकूम से के माने में, यानी तहरीर की गई। तो एक तो इसके बारे में ये आता है कि जब ये लोग उठे थे असहाबे कहफ, तो गार के बाहर एक तख्ती रखी हुई थी। गार जब उठे थे तो लोगों ने एक तख्ती लगा दी थी गार के बाहर, के जिसमें इनके नाम लिखे और इनके कुछ अहवाल लिखे। तो वो तख्ती, यानी रकीम से मतलब है तख्ती जिसके ऊपर लिखा हुआ, तो उनको वो तख्ती वाले, रकीम वाले कह दिया गया। दूसरा ये भी कहा जाता है कि यहूद के पास हो सकता है, उनके पास कोई किताब हो या कोई चैप्टर था जिसमें इनको असहाबे रकीम कहा गया। तीसरी बात एक और भी जो है वो आती है, तीन बातें हो गई, दो नहीं तीन बातें हो गई, कि एक कतबा था, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि रकम की गई चीज, तो एक स्टोन टेबलेट थी जिसपे दीन की बातें लिखी हुई थी, अकीदा लिखा हुआ था। तो इनको असहाबे रकीम इसलिए कहते हैं कि ये वो उस टेबलेट को लेके, उस तख्ती को लेके, उस स्लेट को लेके ये बैठते थे गार में, और अपने दीन को एक दूसरे के साथ मुजाकरा करते थे, समझते थे, सीखते थे, जैसे आज हम कुरान सीखते हैं। तो इनका ऐसा ताल्लुक था रकीम से कि अल्लाह ताला ने इनको असहाबे रकीम कह दिया। सवाल ये है कि क्या हमें भी साहिबुल कुरान कहा जा सकता है? किसी को हम में से किसी को कुरान का साथी कहा जा सकता है कि इतना हमारा वक्त कुरान के साथ गुजरा जैसे इनका रकीम के साथ? और गार वाले इसलिए कि भाई गार में भी कहा जाता है कि ये जाया करते थे वहां पे, और जाके वहां पे ये बैठ के फिर पढ़ा करते थे। तो गार इनकी इबादत की जगह थी और रकीम इनके लिए कुरान की तरह था, तो इसलिए इनको ये नाम दिया गया। तो हम भी देखें कि हम क्या अपने कुरान से, अपनी किताब से ऐसा ताल्लुक रखते हैं, और रोजाना की बेसिस पे हम भी अपनी इबादत से ऐसा ताल्लुक रखते हैं कि हमें भी इसका साथी कहा जा सके। या कभी कभार वंस अवाइल कुरान पढ़ लिया, या वंस अवाइल जब टाइम मिला, जब कुछ दिल किया तो फिर इबादत भी कर ली, क्योंकि इससे इंसान के अंदर जमाव नहीं आता। इसके लिए रोजाना की बेसिस पे ऐसा ताल्लुक होना चाहिए कि उसके साथी कहलाए, इसका साथी तो कुरान है। और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह की फिर मदद आती है कि जो इस तरह दीन पे इस्तकामत करते हैं, ऐसे जमे होते हैं कि आंधी आए तूफान आए वो अपनी जगह से नहीं हिलते। अल्लाह ताला ने फिर इनको देखे उस कुफर के माहौल में, शिर्क के माहौल में भी कैसे इनको सेव किया। ये गार में जाते थे इबादत के लिए, ये अपनी रकीम को पढ़ते थे अपने दीन को मजबूत करने के लिए। अब ये देखें ये गार कैसा था, ये कहफ कैसा था, वैसा ही था जैसे दुनिया में और गार होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि तो उसके अंदर कोई सोने चांदी लगे हुए थे, या कोई बहुत ही हसीन गार था कि जिसको बताया गया, लेकिन वो गार कितना स्पेशल हो गया कि कुरान में एक सूरह उस नाम से हो गई, उस कहफ के नाम गार की सूरत अल्लाह ताला ने उतार दी। कहाफ का लफ्ज इतनी दफा आया, आप इस लफ्ज को पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है, ये कुरान का लफ्ज है। कितना स्पेशल हो गया वो गार, क्यों? क्या वो गार स्पेशल था या गार में रहने वाले स्पेशल थे? गार स्पेशल नहीं था, गार वाले स्पेशल थे, जिनसे गार भी स्पेशल हो गया। आप देखें जूते सारे ही पहनते हैं, किसी के जूते की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन माइकल जॉर्डन अगर कोई जूता पहन ले तो उसकी नीलामी कितने हजारों डॉलर में होती है। इसलिए कि जूता स्पेशल नहीं है, उसके पहनने वाला स्पेशल होता है। तो गार स्पेशल नहीं, उसके रहने वाले स्पेशल थे, जिनकी वजह से उसकी भी अहमियत हो गई। उनका कुत्ता स्पेशल नहीं, मगर उसको कुत्ते को रखने वाले स्पेशल थे, तो कुत्ते का नाम भी आ गया कुरान में, उसका भी जिक्र आ गया। तो ये वो लोग थे, इनकी शान पता चलती है कि ये कैसे लोग थे जो कुफर और शिर्क में, इस माहौल में अपने ईमान को बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आप देखें इस सूरत में और भी किस्से हैं, जो अगले मैंने किस्से बताए हैं उनके नाम पे नहीं है ये सूरत। सूरतुल जन्नतैन हो जाता, सूरह मूसा व खजर हो जाता, सूरह ज़िलकरनैन हो जाता, वो नहीं है। ऐसे सारे किस्सों में कोई ना कोई चीज की कुर्बानी दी गई, लेकिन जितनी कुर्बानी इन नौजवानों ने दी, इतनी बड़ी किसी ने भी नहीं दी। बाप वाले ने तबलीग की, रोजाना चला फिरा, उसने अपने साथी को बताया, उसने एक कुर्बानी दी। मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकले, उन्होंने एक कुर्बानी दी, इल्म का सफर तय किया, ज़ुल्करनैन भी दुनिया में घूमा, लेकिन ये सारे लोग वापस घर आ जाते थे, मगर ये नौजवान निकले तो कभी ना आने के लिए उन्होंने हिजरत की, अपना सब कुछ छोड़ा। ये पता है बहुत अमीर लोगों के, बाज कहते हैं वजीरों के, अमीर अमीर लोगों के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपना स्टेटस, अपना घर बार, अपनी जवानी, अपना खानदान, अपना अपना करियर, अपना फ्यूचर छोड़ दिया अल्लाह की खातिर। इसलिए इनका किस्सा सबसे पहला है, और सारी सूरत इन्हीं के किस्से के नाम से मौसूम है। और ये सूरत जैसे मैंने आपको बताया हबशा जाने से पहले उतरी थी, तो सहाबा को भी एक तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है कि हिजरत मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह की खातिर अपना ईमान बचाने के लिए घर भी छोड़ना पड़े तो कुछ नहीं है। ईमान ना जाए, जान चली जाए। पास लोग अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि दीन ईमान की खातर कुछ कुर्बान करने की जरूरत नहीं, बस ठंडा ठंडा दीन चाहते हैं, बस दीन का ठप्पा लग जाए, बाकी कुर्बानी मैंने कोई नहीं देनी। घर छोड़ना तो दूर की बात है, चंद घंटे पूरे हफ्ते में निकालने, अब हमारे बाकी काम कैसे होंगे? हम जॉब भी करते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, फिर हम दूसरे काम ना करें? दीन को सीखने के लिए बस हम लगा दें अपने घंटे, हम मसरूफ लोग हैं, तो हम तो ये कुर्बानी नहीं दे सकते। तो इतनी कुर्बानी भी देने को कोई तैयार नहीं। हमको कन्विंस करना पड़ता है कि कुछ नहीं होगा, आपके बाकी काम भी हो जाएंगे, कहीं कमी नहीं आएगी, मगर उनको लगता है ये कुर्बानी दे दी ना हमारी जिंदगी रुक जाने, हमसे कुर्बानी का तो कहो ही ना, जबकि हम हर जुमे को सूरह काफ पढ़ते हैं और उसमें यही सीखते हैं, दीन के लिए कुछ लुटाना पड़े लुटा देना, घर छोड़ना पड़े छोड़ देना, खानदान छोड़ना पड़े छोड़ देना, रिश्ते तोड़ने पड़े तोड़ देना, ईमान नहीं जाना चाहिए, कुछ लगाने का इस दीन के लिए ये दर्स मिलता है, कुछ तो लगाओ अल्लाह के रास्ते में। आपको कोई घर छोड़ने को तो नहीं कह रहा, वतन छोड़ने को नहीं कह रहा, गारों में जाने को इस वक्त कोई नहीं कह रहा, कुछ तो करो, कोई हिलजुल तो हो, कोई हरकत तो हो। इस सूरत में मुसलसल हरकत है, आप देखें, ये भी निकले बाग वाले भी, बाग वाला एक आदमी निकला दूसरे को दावत और तबलीग करने के लिए, मूसा और मूसा अलैहि सलाम भी निकले इल्म हासिल करने के लिए, जोर करना है तो पूरी दुनिया में घूमा। तो हमें दर्स नहीं मिलता कि हरकत, अल्लाह के रास्ते में सरगर्म अमल, एक्टिव हो जाना, कुछ करना। हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, वो कुछ हो, बस नाम रख लिया अपना, तो अब बस ठीक है, मुसलमान ही है, दिन रात ऐसे ही गुजर रहे हैं, और ही कामों में गुजर रहे हैं, हरकत तो हो रही है लेकिन अल्लाह की खातिर नहीं, उसके दीन के लिए नहीं, कोई एफर्ट नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं सरगर्मी अमल नजर नहीं आते। क्या आज तक हमने कुरान पढ़ने सीखने के लिए कोई वक्त लेने का, वक्त लगाने का सोचा कि हम पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे, हमने वक्त देना? सबसे पहले अगर पूछते कोर्स कितने साल का, कब खत्म होगा, अगर कह दें कि भाई 5 साल लगेंगे या 6 साल, हाय वहीं पे हाय निकल आती कि हाय हाय इतना देर, हमारी जिंदगी का इतना हिस्सा, ऐसे लगता है जैसे इनको दिन रात इसी के अंदर जुटा देना है किसी ने, और अब इन बेचारों से कुछ होगा ही नहीं, जैसे इनको कोई बांध दिया है। इतनी मुश्किल, इतनी मुशक्कत इस कुरान के बारे में हमारे ख्याल आते हैं, जिसको कहा गया इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहो। क्या हमने अपनी फैमिली तक बात पहुंचाने के लिए कुछ एक्टिविटी की, कुछ हिलजुल की? क्या कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनको, जिनका राशन पानी हमने अपने जिम्मे लिया? कुछ अल्लाह के दीन के लिए कुछ तो करें ना, अल्लाह के रास्ते में कुछ तो वक्त लगाएं, कुछ माल लगाएं। कुफर के इस माहौल में हमने आगे दीन को पहुंचाने के लिए कोई एफर्ट की है? कहीं कोई पैसा लगाया, कहीं कोई फिक्र की, कहीं कोई कोशिश की, कहीं कोई कोई जरा सा हिलजुल की है? तो देखें वो लोग कैसे निकले, कैसे उन्होंने अपना आप लगा दिया, और ये आज की बात नहीं, पुराने जमाने की बात है, पुराने वक्त की बात है। बास कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की, लेकिन ऐसा ज्यादा ये ऑथेंटिक बात नहीं लगती, इसलिए क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले तो ये यहूद का दौर था, और यहूदी तो बहुत ज्यादा खिलाफ थे ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद, तो यहूदी तो बहुत खिलाफ थे ईसा अलैहिस्सलाम के, और उनकी नबूवत को मानते ही नहीं थे, तो यहूदियों ने तो नहीं कहना था कि आप जाके उनसे सहाबे कहफ के बारे में पूछें। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की तो नहीं लगती ये बात, उनसे भी पहले की लगती है। बार कैफ कोई भी दौर था, बहुत पुराना दौर था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो असहाबुल कहफ भी थे और असहाबुर रकीम भी थे। अल्लाह करे कि हम भी अहलुल कुरान के नाम से पहचाने जाएं, और अहलुल कुरान के नाम से अल्लाह ताला हमें कयामत के दिन उठाए, कुरान वाले, कुरान के साथी, कुरान के साथ वक्त लगाने वाले। इज अवल फितयतु इलल कहफ, जब उन्होंने पनाह ली, जब वो लौटे, पनाह ली उन्होंने जाके, किन्होंने? फितिया ने, नौजवानों ने, ये जवानी की जो एज है, ये तो फितिया कहते हैं 15-16 साल से लेके 33 इयर्स की उम्र तक, बिल्कुल यानी आप जवान है, स्ट्रांग है, एनर्जेटिक है, तो उस वक्त को फितिया नौजवान जवानी कहते हैं। वो काफ में पनाह ली उन्होंने, क्यों पनाह ली थी, अब एक्स्ट्रा बातें नहीं कुरान बताता, इसकी डिटेल आगे भी आएगी, मगर ये पता चलता है कि उनकी पूरी जो कौम थी ना, वो शिर्क में मुबतला थी, कुफर में मुबतला थी, और जब कौम ने देखा कि हम तो इबादत करने जाते हैं और ये लोग तो हमारे साथ नहीं आते, और ये लोग इधर उधर हो जाते थे जब वो अपने टेम्पल्स में जाते थे इबादत के लिए, तो जब इधर उधर हो जाते थे तो एक दिन इनको आपस में एक दूसरे को मिल गए, और एक ने कहा कि भाई तुम किस लिए आया, उसने कहा भाई मैं तो इस चीज को नहीं सही समझता, दूसरे ने भी यही कहा, इस तरह से आपस में ये एक इनकी बॉन्डिंग बन गई, और इन्होंने मिलजुल के जब एक दूसरे से बात की तो पता चला कि सारे ही जो है वो तौहीद पे है। तो जो इनका बादशाह था, दकियानूस उसका नाम था, वो बड़ा सख्त था, बड़ा सरकश था, उस जमाने में बादशाह बड़े जुल्म करते थे, और वो शिर्क की तालीम करता था, और सबसे बुत परस्ती कराता था कि सब इन्हीं को पूजो। तो जब ये नौजवान जो अपने बाप दादों के साथ इसी मेले में गए थे, उन्होंने जब वहां ये सब देखा तो उनके दिल में यही आया कि नहीं, ये हमने नहीं करना। तो जब ये लोग वहां से निकले हैं, बात लोगों को पता चल गया, और उन्होंने इनको पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया कि भाई ये तो इस तरह से तौहीद की बात कर रहे हैं, और ये तो कह रहे हैं कुछ और ही कह रहे हैं, हमारे दीन पे नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि मैं क्योंकि किसने शिकायत भी लगा दी थी, तो बादशाह ने कहा कि मैं तुम लोगों को टाइम देता हूं, इस टाइम के अंदर तुम मुझे बता दो कि तुमने क्या दीन ईमान अपने लिए करना है, किस पे तुम हो। अब जो इनको मौका मिला तो समझ लें एक जमानत के ऊपर इनको रिहाई मिली, और उसमें ये भाग गए अपने घरों से, और भाग के इन्होंने गार में पनाह ली, क्योंकि अब ये क्या है, मोस्ट वांटेड हो गए हैं। या तो जाके ये उनकी बात मान ले और शिर्क करें और बुतों को पूजें, और या फिर ये वहां से निकल जाएं, क्योंकि और कुछ रास्ता नहीं है, अब मौत इनका पीछा कर रही है। देख लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया, जब दीन को खतरा महसूस हो तो उस वक्त ऐसे किसी जगह पे आप हैं जहां पे आपको लगता है मेरा ईमान सलामत नहीं रहेगा, तो वहां से निकल जाओ, हिजरत करने का हुक्म है। और हदीस में है कि इंसान का बेहतरीन माल मुमकिन है कि बकरियां हो जिन्हें लेकर वो पहाड़ों में चला जाए और वहां रहे सहे और अपने दीन को बचाने की खातिर भागता फिरे। तो ऐसे हाल में लोगों से फिर अलग हो जाना, तो यानी दज्जाल का जब वक्त आएगा तो फिर तो यही होगा ना। तो अब इन्होंने भी क्या किया, ये तो सूरत हमें, ये 10th आयत हमें यही बता रही है कि पनाह लो फिर जाके गार में, ठीक है। और जब वहां गए, फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अच्छा सुभान अल्लाह, देखें जाते ही ऐसे नहीं किया उन्होंने, बैठ के कहे हाय बताओ अब क्या करना है, हाय हमें तो जान के लाले पड़ गए, अल्लाह तू कहाँ है, तू हमारी मदद नहीं करता, हाय अल्लाह हम तो तेरी खातिर ही कर रहे थे, अब हमारी क्या ये सजा है कि हम इस तरह हो और हमारी मदद ही नहीं आ रही हमारे लिए, और हम यहाँ पे आके छुपे बैठे अपनी जाने बचाने को ये कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसी बात, ना अल्लाह से कोई बदजनी, ना कोई मायूसी, ना कोई ऐसे गिले शिकवे शिकायतें, हम तो जरा सा काम कर लेना तो हमें लगता है कि हाय हमने तो पता नहीं नाउज़ बिल्ला अल्लाह के ऊपर कोई एहसान कर दिया। तो वो बैठते ही कहते हैं, फा का लफ्ज बता रहा है, उसी वक्त उन्होंने कहा, फौरन दुआ की है अल्लाह ताला से। तो यानी एक आप ये देखें कि ऐसे नहीं किया कि घर में ही बैठ के दुआएं करते रहते, अल्लाह अब हमें बचा लेना, अब तेरा काम है हमें बचाना, वो उन्होंने एक्शन भी किया, सबब भी इख्तियार किया, और फिर आप दुआ भी कर रहे हैं। दूसरे क्या दुआ करते हैं, अल्लाह हमें अपनी तरफ से रहमत दे, इसलिए कि ये अल्लाह की रहमत ही है जिससे इंसान ईमान लेकर आता है, और अल्लाह की रहमत ही होती है कि कोई भी चीज इंसान को मिले वो अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं हो सकती, इवन जन्नत भी अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं मिलेगी। तो वो रहमत मांगते हैं, हय्य लाना मिन अम्रिना राशदा, और अल्लाह हमें अपने पास हिदायत अता फरमा, हिदायत का सामान कर दे, हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे, हमारी सिचुएशन को सही कर दे, हमारे हालात को बदल दे, ये वो मांग रहे हैं। और आप ये देखें, अल्लाह ताला ने यहां पे भी फितिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, आगे भी फितिया तो उनकी बात आई, तो ये भी कहा जाता जा सकता था इज अवा इलल कहफ, जब पना ली गार में, पहले असहाबुल कहफ तो बता दिया गया, अब फितिया दोबारा कहने की क्या जरूरत, फितिया मेंशन करने की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला हमें बताना चाहते हैं कि ये नौजवान थे, जवान लोगों थे, उनकी जवानी को मेंशन किया गया। एक रीजन इसका ये है कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जो ईमान लाने वाले थे ना, वो सारे नौजवान थे, सिर्फ हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहुमा ये सीनियर मोस्ट सहाबा थे, बाकी सारे बिल्कुल यंग थे। इसीलिए तो काफिर कहते थे ना कि ये यूथ है, इसको क्या पता, ये इमेच्योर लोग हैं, इनको क्या पता, इनके साथ ऐसे ही लड़के से लगे हुए इनके साथ। तो जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं वो पक्के हो चुके होते हैं, उनके ख्यालात भी पक्के होते हैं, उनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यंग जब अल्लाह की तरफ आ जाए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरी ये बात है कि यंग के अंदर ना एनर्जी होती है, यंग जो लाइफ के अंदर इंसान अल्लाह की तरफ आता है ना, अल्लाह ताला उसकी बड़ी कदरदानी करता है। इसीलिए तो कयामत के दिन एक वो लोग जिनको अल्लाह ताला के अर्श का साया मिलेगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई शेड ही नहीं होगा, उस दिन कुछ लोग होंगे वो बड़े मजे में होंगे, बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनको साया मिला होगा, और वो होंगे जिन्होंने अपनी जवानी में अल्लाह की इताअत की, जवानी में अल्लाह की इबादत की, जवानी में अल्लाह की तरफ आए हैं। वो बुढ़ापे में तो फिर इंसान आ ही जाता है, लेकिन जवानी का टाइम आप देखो उसके हार्मोन्स कितने कितने एक्टिव होते हैं, हार्मोन्स कितने चढ़े हुए होते हैं, उसके दिमाग ही कुछ और होता है। इसीलिए तो एक हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला ताज्जुब करता है उस नौजवान के ऊपर जो गुनाह में नहीं पड़ता, उसके यानी जज्बात का जोश है, खुद पे कंट्रोल नहीं होता, इंसान में एनर्जी भी इतनी होती है, और फिर वो उसकी उमंग भी बहुत होती है, उसको अपना ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा होता है, करियर नजर आता है, उसकी जिंदगी पड़ी भी आगे, वो जिंदगी को देखता है, इंजॉय करना चाहता है, वो उसका ध्यान इस तरफ कम ही जाता है कि इंसान अल्लाह की तरफ आए। तो जब इतना जोश होता है ना उसके अंदर, तो वो जोश के अंदर फिर जैसे आज आप देख ले, नौजवान है तो उसके क्या है शौक, ईट आउट करो, मूवीज पे चले जाओ, हल्ला गुल्ला फलां ये चीजें हैं, लेकिन वो दैट्स व्हाट्स एप्रिशिएबल के वो आप देखें उनकी उम्र क्या थी, और वो इस उम्र में अल्लाह की तरफ आए जिस वक्त लोगों का ध्यान नहीं होता, इस वक्त लोग किसी और ही एक्साइटमेंट में होते हैं, और नौजवान लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ ध्यान है, लड़कियां हैं तो कुछ और तरफ, फैशन लिबास ये वो चीजें वो उनके दिमाग पे छाए होते हैं, तो कई उल्टी सीधी हरकतें फिर नौजवान करते हैं। इसीलिए आज देखें आप ये फितना जो है, आज नौजवान ज्यादा फितनों में पड़ रहे हैं, क्यों, इसलिए कि नौजवान लोग जो होते हैं उनकी अंदर जोश बहुत होता है, उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, और वो इन चीजों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए आप सारे जो फितने ये बेहयाई के ये जो सारी चीजों के फितने हैं वो नौजवानों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो वो उम्र जिसमें इंसान कुछ और ही चीजों में मगन होता है, उस उम्र में वो अल्लाह की तरफ आए हैं, उस उम्र में उनको इतना उनके अंदर जज्बा है, इतना उनके अंदर ख्याल है कि वो सब कुछ छोड़ के अल्लाह की खातिर इतना बड़ा स्टेप उठाने को खड़े हो गए, सुभान अल्लाह। और फिर देखें कि उन्होंने ये नहीं किया कि जो है ना अब हम इस मुल्क में हैं ये तो ऐसा कर रहे हैं तो अब हम कुछ तकरीबी कार्रवाइयां शुरू कर दें, कहीं खुदकुश हमले कर रहे हैं, कहीं कत्लोगारा शुरू कर दें, मारधाड़ शुरू कर दें। अक्सर नौजवानों के अंदर ये भी जोश आ जाता है जज्बात में आके, वो तो कहते हैं फिर अब हमें जान की भी नहीं परवाह, फिर वो उल्टी सीधे काम करते हैं। तो ये भी आप देखें कि उन्होंने समझदारी का कितना सबूत दिया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। और ये भी नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है, उन्होंने अपनी डायरेक्शन सही रखी। फिर ये भी देखें कि वो एक जैसे थे ना, तो एक जैसे मिल गए, इसी तरह जहां पे भी लोग चाहते हैं अपना ईमान बचाएं, वो एक जैसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं, एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के अंदर रिश्ते करें, एक दूसरे के साथ उठे बैठे, उससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है। अतवासो बिल हक अतवासो बिल सबर तभी होगा ना, एक अपनी कम्युनिटी बना ले। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की है, और दुआ मोमिन का हथियार है। जब मुसीबत में पड़े, जब मुश्किल में आए, तो सबब तो इख्तियार करें मगर दुआ को ना छोड़ें। आप बीमार हैं ना, इलाज कराएं जरूर कराएं मगर दुआ को ना छोड़ें। आपको रिस्क चाहिए, नौकरी तलाश करें, दुआ को ना छोड़ें। आपको इम्तिहान में कामयाबी चाहिए, उसके लिए पढ़ाई करें लेकिन दुआ को ना छोड़ें। तो ये दुआ बहुत बड़ी चीज है, और हर कदम पे दुआएं करते रहें। तो दो दुआ में स्पेशली रहमत मांग रहे हैं, और आप देखें उनकी सिचुएशन क्या है, भागे दौड़े छुपते छुपाते पता नहीं कैसे पहुंचे होंगे वो गार तक, कैसे वो आके छुप गए, सुभान अल्लाह। हालांकि घरों में उनकी क्या नहीं है, क्या नहीं है उनके घर में, भूखे नहीं मार रहे, अमीर कबीर खानदानों के बेटे हैं। अल्लाह अकबर। तो हर एक को अल्लाह की रहमत की जरूरत है, इसलिए ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है जो उन्होंने मांगी। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और अपनी रहमत उनके ऊपर निछावर की। कैसे? फदरबना अला आदानिहिम फिल काफिसिनीन अददा, पे थपक थपकी दे दी हमने उनके कानों पे गार में, कई सालों तक थपकी दे दी। कितने सालों तक यहां नहीं बताया, आगे बताया जाएगा। यहां पे और कोई ऐसी तमहीद है ना, ये कोई ऐसी बात नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं की गई। थपकी दे दी अल्लाह ताला ने उनके कानों पे, यानी जैसे माँ थपक थपक के सुलाती है ना बच्चे को, तो कान पे आपने देखा थपकी देती है ऐसे, अल्लाह ताला ने इतनी मोहब्बत से उनको सुला दिया। और आपको पता है, लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि सोने के लिए इंसान अपनी आंखों को चाहे कवर ना करे, हम तो चादर लेके सोने की कोशिश करते ना, चाहे आपकी आंखें कवर ना हो, लेकिन डीप स्लीप के लिए जरूरी है कि आपके कान बंद हो, आवाजें ना आए। तो सुभान अल्लाह, वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे सुलाया कि उनके कानों को बंद कर दिया, कानों पे थपकी दे दी, कानों में जैसे कुछ रुकावट डाल दी है ना कि वो उठे ना, डीप स्लीप में चले गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और इतनी डीप स्लीप के कई सौ साल गुजर गए। सुमा बास ना हम, फिर हमने उठाया उनको। बास ना कहते हैं मौत से जिंदगी, मर के जी उठना, लेकिन ये लफ्ज इसलिए आया कि नींद भी मौत की बहन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का को बताना था ये भी, साथ उनका अकीदा सही करना था। तुम कहते हो ना मरने के बाद कैसे जिंदा होंगे, अल्लाह ने इनको उठा दिया तो तुम्हें क्यों नहीं उठा सकता। तो उनको बास ना, उनको समझ लो कि मौत के करीब जाके फिर उनको उठाया, लीना आलमा, ताकि हम जान ले अय्युल हिस्बैन असलिमा नबी सुहमदा, कि कौन सा ग्रोह ऐसा है जो याद रखता है कि कितनी गिनती ये रहे, कितनी मुद्दत तक सोए रहे। ली नालमा, ये मतलब नहीं है कि अल्लाह को नहीं पता तो अब अल्लाह नहीं जानना है, नहीं, अल्लाह ताला ने सबको दिखाना है। और हिस्बैन कौन है, दो ग्रोह किस में हो गए, इसके बारे में मुफसरीन की एक राय ये है कि वो नौजवान ही दो ग्रुप में हो गए, एक ने कहा हम दिन या दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं। ये आगे जाके आपको आयत में पता चलेगा इसकी डिटेल, इंशाल्लाह आयत 19 में आ रही है, वो इसकी तफसीर है। तो एक ग्रोह ने कहा कि नहीं, हम तो अल्लाह को बेहतर पता है हम कितना सोए हैं, लगता है ज्यादा सोए। दूसरा, इसके हिस्बैन कौन हो गए, जब ये लोग उठे थे ना तो उस जमाने के लोग दो ग्रोहों में हो गए, वो कंफ्यूज हो गए कि कितना अरसा सोए हैं। तीसरे, यहूद में इख्तलाफ था ये कितना अरसा सोए हैं, उनको खुद भी नहीं पता था कि असहाबे कहफ एग्जैक्टली कितना अरसा सोए हैं, ये तो पता था लंबा अरसा सोए मगर कितना ये नहीं पता था। ठीक है, तो तुम तो हमारे नबी से पूछते हो कि इनका हाल बताएं, तुम्हें तो खुद भी इनका पूरा हाल नहीं पता। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, और अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम देखेंगे इनकी मजीद डिटेल कि ये कैसे प्यारे नौजवान थे जिनके अल्लाह ताला ने जिनका किस्सा यहाँ पे बयान कर दिया। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.